शाम के वक्त पार्थ की गाड़ी निवेदिता हाउस के सामने आकर रुकी। कॉलेज खत्म होने के बाद वो रूही को खुद ही ड्रॉप करने आया था। रूही अब उसकी इस कैद से परेशान हो चुकी थी। उसने खुद में बड़बड़ाते हुए कहा, जब देखो भंवरे की तरह आसपास मंडराता रहता है और मुझे बटरफ्लाई बुलाता है, पागल कहीं का। अनंत उसके आगे चुटकी बजाते हुए कहा, बटरफ्लाई घर आ चुका है, मुझे काम है, मैं बाद में आऊँगा। ये सुनते ही रूही की आंखें चमक उठीं। उसने खुश होते हुए कहा, तुम जा रहे हो मिस्टर अंकल, थैंक यू सो मच मुझे थोड़ी देर फ्री रखने के लिए, अब मैं अंदर जाकर अच्छे से सब लोगों से बात करूंगी। बेचारी रूही खुश हो रही थी कि उसे मन ही मन प्रिया और राविया के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, उन लोगों को जानने का मौका मिलेगा। लेकिन असल में आज घर पर कोई नहीं था। प्रिया हनीमून पर जा चुकी थी, अनाही अपने घर जा चुकी थी और राविया हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी थी। रूही तेज कदमों से चलती हुई अंदर जाने लगी। उसे ऐसे खुश होते देखकर पार्थ हैरान हो चुका था। उसने आंखें छोटी करते हुए कहा, क्या मेरी कंपनी इतनी बुरी लगती है बटरफ्लाई तुम्हें? इतना बोलकर उसने गहरी सांस छोड़ी और फिर से अपनी गाड़ी स्टार्ट कर ली। रूही जैसे ही अंदर गई, उसे सबसे पहले निवेदिता दिखाई दी, जो कॉल पर किसी से बातें कर रही थी। रूही उनके पास जाकर उनके गले लगाते हुए बोली, गुड इवनिंग ताई जी, कैसी हैं आप? निवेदिता ने पहले कॉल कट किया और फिर रूही को वापस गले लगाते हुए बोली, बेटा तुम आ गई कॉलेज से? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, तुम बताओ कैसा था तुम्हारा पहला दिन, कोई दोस्त बना या नहीं तुम्हारा? रूही ने मुंह बनाया और फिर वो दोनों सोफे पर बैठ गईं। रूही ने निवेदिता के कंधे पर सिर रखते हुए कहा, ताई जी आपको क्या बताऊँ, ये जो मिस्टर अंकल है ना, हर वक्त मेरे आसपास रहते हैं। पर वैसे आज एक चीज़ अच्छी हुई, मुझे पता चला कि मिस्टर अंकल बुरे नहीं हैं। आपको पता है, तीन लड़के मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे थे और मिस्टर अंकल ने उन्हें एक बार जोर से डांट लगाई और वो सब लोग डरकर भाग गए। मुझे इतनी हंसी आई, मैं आपको क्या बताऊं। वैसे बाकी लोग कहाँ गए, मुझे अपनी ये स्टोरी सबको सुननी है। ये सुनकर निवेदिता हल्के से मुस्कुराई और फिर रूही का सिर सहलाते हुए बोली, तुम अपने पति को मिस्टर अंकल बुलाना बंद करो, इससे अच्छा तुम उसे पार्थ कहकर बुला सकती हो। और रही बात बाकी लोगों की, तो आजकल सब अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हैं बेटा। पहले ना सब यहीं रहते थे, प्रिया तो पूरे दिन मेरे साथ रहती थी, कॉलेज भी इतना बंक करती थी और हम दोनों बैठकर बस कोरियन ड्रामा देखते थे। लेकिन अब तो सब कुछ चेंज हो गया है। रूही को निवेदिता के लिए बुरा लग रहा था। उसने निवेदिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, कोई बात नहीं है ताई जी, अब मैं आ गई हूँ ना, मुझे भी टीवी देखना बहुत पसंद है, मैं आपके साथ कोरियन ड्रामा देखूंगी। कोरियन क्या, मैं तो स्पैनिश, चाइनीज, पाकिस्तानी, इंडियन सब कुछ देख सकती हूँ। उसकी इस बात पर निवेदिता को हंसी आ गई। रूही ने आगे पूछा, वैसे सब लोग गए कहाँ हैं? निवेदिता ने गहरी सांस भरते हुए कहा, अनाही का तो पता नहीं है और प्रिया वेदांत के साथ घूमने गई है, राविया और अनंत अपने ऑफिस गए हैं। माधवी और राधिका दोनों आपस में बातें करते हुए सीढ़ियों से उतर रही थीं। राधिका ने जैसे ही देखा कि रूही हंसते मुस्कुराते हुए निवेदिता से बातें कर रही है, तो उसका चेहरा गुस्से से भर गया। वो तेज कदमों से चलती हुई उनके पास आई और फिर रूही की दूसरी साइड बैठते हुए बोली, बेटा तुम्हारी सास मैं हूँ, तो फिर तुम निवेदिता भाभी से कैसे चिपक कर बैठी हो, चलो मुझसे बात करो। राधिका के चेहरे पर जलन साफ साफ दिख रही थी। उसे ऐसे जलते देखकर निवेदिता और रूही दोनों को हंसी आ गई। तो वहीं रूही ने राधिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, आप मेरी सासू माँ हो, चलो मैं आपको भी बताती हूँ, आज आपके बेटे ने मेरी तीन गुंडों से हेल्प की। आपको पता है, वहां जाते ही तीन लड़के मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये सुनते ही राधिका की आंखें फैल गईं। वो तुरंत ही सोफे से उठी और फिर किचन की तरफ जाते हुए बोली, तुम हो ही इतनी सुंदर, तुम एक काम करना, काला धागा बांध कर जाना कॉलेज में, ऐसे तो तुम्हें बहुत नजर लगेगी। थोड़ी देर बाद ही वो हाथों में दो लाल मिर्च लेकर आई। फिर उसने रूही की नजर उतारते हुए कहा, मैं अपनी बहू को किसी की नजर नहीं लगने दूंगी। उसे ऐसा करता देखकर रूही हैरान रह चुकी थी, ये सब कुछ उसने पहली बार एक्सपीरियंस किया था। तो वहीं निवेदिता को ये देखकर अच्छा लग रहा था, कम से कम राधिका अपनी बहू का तो ख्याल रख रही है, वरना उसे किसी के केयर करने की आदत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पार्थ छोटी उम्र से ही उससे दूर रहने लगा था। रितेश भी अपने काम में बिजी रहता था, जिस वजह से राधिका को पता ही नहीं था कि अगर कोई इंसान आपके साथ रहता है तो उसकी केयर भी की जाती है। वहीं माधवी रूहान का इंतजार कर रही थी। उसे सुबह से पता नहीं था कि रूहान वापस कहाँ चला गया है, ना ही वो डॉक्टर रश्मि के पास था, ना ही वो अपने ऑफिस था और ना ही वेदांत के ऑफिस, तो आखिर गया तो गया कहाँ? ऊपर से अनाही का भी कोई अता पता नहीं था। उसे डर था कहीं उन दोनों के बीच सब कुछ सॉर्ट आउट तो नहीं हो गया है, क्योंकि जैसे रोहान ने लड़ाई की थी उसके बाद उनका डाइवोर्स होना तो तय था। ऊपर से अनाही जितनी खुदगर्ज लड़की है वो अपनी इतनी डिसरिस्पेक्ट के बाद रोहान के साथ रह पाएगी, ये थोड़ा मुश्किल था। और आखिरकार माधवी का इंतजार खत्म भी हुआ जब उसे मेन गेट से रोहान अंदर आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखते ही माधवी की आंखें चमक उठी। वो सोफे से उठते हुए बोली, बेटा तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। रोहान ने आंखें छोटी करते हुए कहा, आप मेरा इंतजार क्यों कर रही थी। उसके सवाल पर माधवी पल भर के लिए थोड़ा हड़बड़ा गई, लेकिन अगले ही पल उसने मुस्कुराते हुए कहा, वो मैंने तुम्हारे लिए काढ़ा तैयार किया था, उसे पीने से तुम्हारा सिर दर्द ठीक हो जाएगा, बस इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। रोहान ने उबासी लेते हुए कहा, एक्चुअली मुझे बहुत नींद आ रही है, अभी मुझे कुछ नहीं पीना है, बस सोने जाना है, और मेरा सिर दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है, आप चिंता मत करिए। इतना बोलकर रोहान हल्के से मुस्कुराया और फिर तेज कदमों से अपने कमरे के अंदर चला गया। निवेदिता बस उसे उम्मीद भरी नजरों से देखती रह गई। उसे लग रहा था कि कम से कम एक बार तो वो उसकी तरफ देखेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। रोहान उसे पूरी तरीके से नजरअंदाज करते हुए वहां से चला गया, जिसके बाद निवेदिता का दिल भी हल्का भारी हो गया। लेकिन तभी निवेदिता को अनाही की आवाज आई, जो अब अपनी साड़ी को संभालते हुए अंदर आ रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। वो अंदर जाकर निवेदिता के बगल में बैठते हुए बोली, मम्मी जी मेरी मम्मी ने आपके लिए कुछ भेजा है, बोली मेरी समधी को जाकर दे देना, मैं अपने घर जाकर आई हूँ। निवेदिता ने अनाही के कमरे की तरफ देखते हुए कहा, तो क्या रोहान तुम्हारे साथ गया था। निवेदिता के ये बोलते ही माधवी के कान भी खड़े हो गए थे। वहीं अनाही ने मुंह बनाते हुए बोला, मम्मी जी प्लीज आप रोहान जी का नाम मत लीजिए, फिलहाल हम दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं है, और मैं क्यों उनको लेकर जाऊंगी भला, बच्ची थोड़ी हूँ मैं, अकेले ही गई थी और अकेले ही वापस भी आ गई हूँ, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, मैं इतनी केपेबल तो हूँ कि सब कुछ कर सकती हूँ, और मुझे लगा नहीं कि अपने घर जाने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत होती है, इसलिए मैंने रोहान जी से कहा भी नहीं कि मैं अपने घर जा रही हूँ। ये सुनते ही निवेदिता का चेहरा घबराहट से भर गया, वो कभी भी अपने बेटे और बहू के बीच लड़ाइयाँ नहीं चाहती थी। तो वहीं माधवी का चेहरा खुशी से खिल उठा था, अब उसे उन दोनों सास बहू की बातों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। उसके काम की बात पूरी हो चुकी थी, इसलिए वो उठकर अपने कमरे में जाने लगी।
उसके जाते ही अनाही ने गहरी सांस लेकर कहा, मम्मी जी आप चिंता मत करिए, पति पत्नी के बीच छोटा मोटा झगड़ा तो चलता रहता है, और अगर रिश्ते में लड़ाई नहीं होती है तो रिश्ता बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता है। आप ये देखिए ना कि मेरी मम्मी ने क्या भेजा है आपके लिए। ये सुनकर निवेदिता हल्के से मुस्कुराई और फिर अनाही का सिर सहलाते हुए बोली, कितनी समझदार है मेरी बच्ची। और उसके बाद वो गिफ्ट देखने लगी जो काशी ने उसके लिए भेजा था। निवेदिता को खुश देखकर अनाही ने भी एक गहरी सांस ली और फिर उठकर वो भी अपने कमरे में जाने लगी। आखिर उसे रोहान के साथ लड़ाई की एक्टिंग जो करनी थी।